عاجل کان قومی کا، یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ کیا چیز تمہیں جلدی کر کے لے کے کر آئی تمہاری قوم سے؟ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام، بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70، آپ کو پتا ہے وہ بزرگوں کو بنی اسرائیل کے لے کر گئے تھے، وہ پیچھے پیچھے تھے موسیٰ علیہ السلام، جلدی جلدی پہنچ گئے اوپر، اور بعض میں آتا ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ ہی آ رہے تھے، قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کے پاس ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور خود دوڑے دوڑے آگے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے بات کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا، اصل میں آپ خود بھی تو سوچے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت پا لی تھی، وہ جو لذت ہے تو وہ جس کو مزہ مل گیا ہو اللہ رب العالمین سے کلام کرنے کا، پھر تو پھر اس کو اس کی تو دوڑیں لگیں گی نا. وہ شوق تھا کہ میں اللہ سے جلدی جا کے بات کروں، تو بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، جیسے جنہوں نے حج اور عمرہ کبھی نہیں کیا ہوتا نا، اللہ کے گھر کبھی نہیں گئے ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے وہاں کی تڑپ ہوتی ہے، کیا لذت ہے وہاں کی، کیا مزہ ہے وہاں کا، تو پھر ان کا دل بھی نہیں کھینچتا، نہ کبھی اداس ہوتے وہاں کے لیے. لیکن جو جتنا زیادہ جاتا ہے نا، آپ دیکھنا یہ اس جگہ کی کیا کشش ہے، کہ جتنا زیادہ جاتا ہے اتنا ہی پھر دل تڑپتا ہے کہ ہائے پھر جاؤں، پھر جاؤں، بھاگ بھاگ کے جاؤں، کب جاؤں گی اب، یہ پھر وہ پیاس اس کی بڑھتی ہی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے میں لذت ملی تھی، تو وہ اب بھاگے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ کیوں آپ آئے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ کیوں آئے، جب پھر کیوں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بتانا ہے نا کہ ان کی جلدی کی کیا وجہ تھی. تو یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بلائے تو جلدی کرنی ہی چاہیے، نماز میں بھی جلدی کرنی چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف صدا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہ اس میں بھی جلدی کرنی چاہیے. لیکن اپنی پوری زندگی میں سوچتے نہ رہیے گا اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، سوچ سوچ کے ہی زندگی آدھی نہ گزار دینا، ایک قدم آگے رکھیں تو دوسرا پیچھے، پھر ایک آگے رکھا تو پھر پیچھے، آئے ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے پاس بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو میں نے اپنے یہ شوق پورے کرنے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں جلدی کریے گا، دیر نہ لگائیے گا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس دن ہم کچھ سن لیتے ہیں اللہ کی بات، وہ ایک قدم آگے بڑھا لیتے ہیں، پھر تھوڑے دن بعد اثر ختم ہو جاتا تو پھر پیچھے دو قدم ہو جاتے ہیں، پھر کبھی یاد آ گیا تو پھر ایک قدم لے لیا. نہیں، بھاگ بھاگ کے آئے اس کی طرف. آنے والے جو پا لیتے ہیں نا اپنے رب کی معرفت، اس کی پہچان جن کو ہو جاتی ہے نا، وہ پھر بھاگ بھاگ کے ہی آتے ہیں. جب پہچان ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو اللہ کے گھر کی بات بتائی ہے، اس کا بھی تو یہی ہے. تو جب پتہ ہی نہ ہو کہ کیا چیز ہے، لذت آشنائی کبھی پائی ہی نہیں، تو پھر جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب عجب شے ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو پھر واقعی انسان نا پھر بے پرواہ ہو جاتا کہ کوئی چیز اس کو میٹر نہیں کرتی. تو اپنی زندگی میں جلدی کریں اللہ کی طرف بڑھنے میں. قال هم اولائی علی اثری، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ بھی آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میرے نقشے قدم پہ، یعنی میرے مجھے فالو ہی کر رہے ہیں، وہ پیچھے ہیں. اور پھر کتنی پیاری بات، وعجلتُ الیک ربی لترضی، اللہ میں تو اس لیے بھاگ بھاگ کے آئے ہوں اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کہ اللہ تو میرے سے خوش ہو جائے، اس لیے بھاگ بھاگ کے آئے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تیری طرف بھاگ کے آئے، کوئی چیز ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، اور ہمیں بھی یہ اللہ میں تجھے راضی کرنا ہے اللہ، کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، کہ ہمارے اس دل کی سب سے بڑی تمنا یہ بن جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ایسے میں زندگی گزاروں، ایک قدم میرا جو اٹھے اللہ تیری رضا میں ہوں، تو خوش ہو جائے مجھ سے. جس بندے کی تمنا یہ بن جائے، جس کی خواہش یہ ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے دنیا سے جائے گا بھی تو اس حال میں کہ اللہ راضی ہوگا، कभी अल्लाह को राजी करने का अगर सोचा ही नहीं, और ऐसे ही जिंदगी सारी की सारी गुजार दी, तो फिर दुनिया से उठेंगे 20 साल में के जब परवाह ही नहीं थी। तो तड़प कितनी है मूसा अलैहि सलाम को, ये अल्लाह के नबी हैं, कैसे तड़प रहे हैं, अल्लाह तू राजी हो जाना, मैं इसलिए भागा भागा आया, अल्लाह तू मेरे से खुश हो जा। अल्लाह अकबर, क्या जज्बे थे। अल्लाह हमारे भी ये जज्बे हमेशा हमारे दिल में रहे कि तू राजी हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है कि अल्लाह ताला उनके लिए तो फरमाता है वला सौफ युअती का रब्बु का फतह रहता है, मेरे नबी ए मेरे महबूब, मैं आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाए। मूसा अलैहि सलाम तो कहते हैं अल्लाह तू मुझसे राजी हो जाए, और अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम आपको इतना देंगे, तेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या शान है उनकी जिनको रब ने राजी करने का फरमाया। कौला फइन्ना कद फतन्ना कौमक मिन बादिका। फिर मूसा अलैहि सलाम यहाँ पे 40 दिन रहे, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया उनको जब तौरात देती, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा बेशक आपकी तो कौम आपके पीछे गुमराह हो गई है, आपके पीछे आजमाई गई है, वह अल्लाह मुसामिरी उनके पीछे आपके पीछे सामरी ने उनको गुमराह कर दिया, आपकी कौम को हमने आजमा लिया है मूसा, आपकी कौम की आजमाइश हो गई आपके पीछे से। क्या आजमाइश थी कि कौम जो थी इनके पीछे से बुत परस्ती में मुबतला हो गई। वैसे होता है ना कि घर का बड़ा कहीं चला जाए तो पीछे से और लोगों को भी शह मिल जाती है कि वो बच्चों को उल्टी तरफ लगा दे, या कोई कोई भी फिर एडवांटेज ले लेता है उनके इनके सर पे जो नहीं है सरपरस्त। तो मूसा अलैहि सलाम गए हैं पीछे से, उन्होंने ये सामरी को मौका मिल गया। अब सामरी कौन था, सामरी के बारे में बहुत सारी बातें मुफस्सरीन ने लिखती हैं, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो उनकी कौम का एक आदमी था। कहते हैं कि वो ईमान उसके अंदर नहीं था, जाहिर है तभी तो उसने ये काम किया। तो लेकिन हमारे से ना तो कब्र में ये पूछा जाना है कि सामरी कौन था, ना हमारे अमल से इसका कोई ताल्लुक है कि हम इसकी खोज लगाते रहे। लेकिन अगर हम इन चीजों में पड़ जाए ना कि सामरी कौन था, सूरह कहफ में जो खिजर कौन थे, जुलकरनैन कौन थे, उनका जो कुत्ता था वो किस रंग का था, वो कितने थे, आपको पता है सूरह कहफ में हम पढ़ रहे हैं कि वो कितने थे, उसके ऊपर ही वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता था, 6 थे, 7वां उनका कुत्ता था। यानी अल्लाह ताला ने वहां पे डिस्करेज किया कि ऐसी बहसों में ना पढ़ो कि आप हवा में तीर चलाते जा रहे हो बस, जिसका कोई हासिल ही नहीं है ना, अगर पता चल भी गया तो कौन सी बड़ी कामयाबी। लेकिन अक्सर आपने देखा हमें इन चीजों के बड़े शौक होते हैं, वो जहां पे अमल की बात होती है उसकी तरफ तवज्जो कम होते हैं, ज्यादा यही पता, ये अच्छा ये कितने थे, कौन था, क्या था। कई लोग इस चीज में बहस करते रहे कि उनका कुत्ता किस रंग का था, कहवा भाई क्या इससे फायदा, अब सामरी कौन था क्या नहीं था जो भी था, असल बात ये कि यहाँ पे बताया गया कि उसने गुमराह कर दिया लोगों को। कोई एक ही बंदा होता है जो लोगों को गुमराह करने के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने आजमाइश कर ली उनकी आपके पीछे से, अल्लाह अकबर, ये इम्तिहान की बात थी। तो इम्तिहान की निस्बत देखे यहाँ पे अल्लाह की तरफ है, कद फतन्ना हमने आजमा लिया, लेकिन जहां पे आगे बात है गुमराही की भटका देने की, तो अदल्ला हुम उस्सामिरियो उनको सामरी ने भटका दिया, वहां पे ये नहीं कहा गया अल्लाह ने उनको भटका दिया। यहाँ पे भी आप अदब सीखे ना इसका, इसे पता, हालांकि अल्लाह के इज्जत के बगैर तो कोई चीज नहीं हो सकती ना, लेकिन अदब हमें सिखाया गया कि जो शर है ना और बुराई है उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करनी है। हम कितने आराम से मुंह से निकाल देते ना, अल्लाह ने उसके साथ ऐसा कर दिया, बड़ा अच्छा नहीं किया। औरतों को तो अल्लाह ने मुश्किल में डाल दिया, पिछले दिनों किसने कहा औरतों को अल्लाह ने इतना मुश्किल में डाल दिया, हम औरतों पर सारा बोझ डाला, हम ही बच्चे पैदा करें, हम ही ये करें, हम ही ये करें, कितनी ये बेअदबी की बात है। हम दुनिया में इंसानों को भी इतना अदब देते हैं कि हमारे वालदैन होते हैं या हमारे को बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो हम उनसे इतनी इज्जत से बात करते हैं और उनको कहते हैं, कभी उनको ये नहीं कहते हमारी माँ तो ऐसी, माँ भी सामने बैठी है और उनका, हमारी माँ तो ऐसी है, इसने तो ऐसे कर दिया, इसने तो मेरे साथ ऐसे किया, इसने तो मेरा कभी ख्याल ही नहीं रखा, मेरी माँ ने तो, कभी नहीं ऐसे कहते। क्यों? इसलिए कि हमें पता है कि ये अदब के खिलाफ है। क्या बात है कि जब अल्लाह ताला की जात के लिए अदब की बात आती तो हमें भूल जाती है, और अल्लाह ताला के बारे में बात करते हुए हम जरा भी नहीं सोचते कि वो सुन रहा है, वो मुझे देख रहा है, उसको पता है मैं क्या कह रही हूं। और अदब, माँ बाप तो क्या चीजें हैं, माँ बाप तो एहसान क्या चीजों का, अल्लाह ताला के जितने एहसान आते हैं हमारे ऊपर, और अल्लाह की जो जात है तो सबसे ज्यादा इस काबिल है कि उसका अदब किया जाए। हम माँ बाप के अदब को जानते हैं, तो ये बात हमारी कहाँ गुम हो जाती है कि जब अल्लाह की जात की बात आती तो हमें अदब का सारा ही सबक भूल जाता है, जबकि वो सबसे अदब के लायक हस्ती है। तो पैगंबरों तक ने भी, आप देखे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त है, और वो भी कहते हैं, जब सारी बातें करते हैं, अल्लाह ने मुझे ये दिया, अल्लाह ने मुझे, फिर उसके बाद कहते हैं जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। अल्लाह कितनी प्यारी बात है, कि ये नहीं कहते जब अल्लाह मुझे बीमार कर देता है, ये भी तो कह सकते थे, बीमारी भी तो अल्लाह की तरफ से ही आती है। नहीं, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता है, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। शिफा की निस्बत अल्लाह की तरफ, बीमारी की नहीं। लेकिन हमारे देखें कितने, यानी हम बेअदब है, हमारी जुबानें कितनी लूज है, ये हम अल्लाह ताला के बारे में बात करते हुए जरा भी नहीं सोचते, कितनी जुर्रतें करते हैं। तो उसका करम है कि हमारे जैसे लोग भी जमीन पे चल फिर रहे हैं, वरना हमारी ना बातें इस काबिल, ना काम इस काबिल। अस्तग़फिरुल्लाह। फरजा मूसा इला कौमी गदबान आसिफा, ये हमने पहले भी सूरह आराफ में भी पढ़ा है कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए इतने सख्त गुस्से में, जब उनको ये पता चला पीछे से मेरी तो कौम का बेड़ा गर्क हो गया। काला या कौमी, उन्होंने कहा मैं, मेरी कौम, अलम याएदकुम रब्बुकुम वादन हसना, क्या तेरे तुम्हारे रब ने तुम्हारे ये अच्छा वादा नहीं किया हुआ था कि वो तुम्हें शरीयत देगा, वो तुम्हारे साथ सारे अच्छे वादे किए हुए थे अल्लाह ताला ने, क्या तुम्हारे साथ अच्छे वादे नहीं किए हुए थे कि तुम इसकी पूजा करना ही शुरू हो गए। देखे ना, सामरी ने मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी को अपने लिए, अपने इंटरेस्ट में यूज किया, और उसने जो है, उन्होंने कहा मौका अच्छा है, तो उसने वो एक बछड़ा सा बना के और उस आगे बैठ गए सारे। अब देखे, कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छे वादे नहीं किए थे कि तुम ये किस काम में पड़ गए, या अफतौला अलैकुमुल अहद, या इतनी वादे की मुद्दत लंबी हो गई थी कि तुम अब मायूस हो गए और तुमने कहा कि कभी ये वादा पूरा ही नहीं होगा और हम चल पड़े इसकी पूजा करने के लिए। अम अरब तुम अन यहिल्ला अलैकुम गदबुम मिन रब्बिकुम, या तुमने इरादा चाहा कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का गजब ही टूटे, तुमने ये चाहा अपने लिए, क्योंकि इसके ऊपर तो यही मिलेगा। फअखलफ तुम मौईदी, और तुमने मेरे वादे का भी नहीं सोचा कि जो मेरे साथ तुमने वादा किया हुआ है उसके भी खिलाफ कर लिया। अपनी कौम को इंस्ट्रक्शन देकर गए थे। अब देखिए आप, यानी वो आए हैं तो अल्लाह ताला ने जब उनको बताया आपके पीछे आपकी कौम का ये हाल हो गया है कि वो फितने में मुब्तला हो गए हैं, वो आजमाए गए हैं, तो उनके लिए तो एक कितनी परेशानी की बात थी, वो तो किस तरह छोड़ के गए, वो किधर क्या काम करने गए हैं, शरीयत लेने गए हैं, अल्लाह से कोड ऑफ लाइफ लेने गए हैं, ताकि अब अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, उसकी रजा को पाया जाए। अब उस एब्सेंस के अंदर पीछे क्या हो गया, सारा ही बेड़ा गर्क हो गया। तो इसके अच्छी जिंदगी का वादा के दो मतलब हो सकते हैं, या तो वादा पूरा होने में इतना लंबा अरसा लग गया कि तुम भूल ही गए और तुम कुछ और तरफ लग गए, या तुम इसने तुमने ये इरादा किया कि अल्लाह का गजब ही तुम्हारे ऊपर आए, तुम इस इंतजार में ही बैठे थे तुम्हारे ऊपर कोई गजब तोड़े अपना, और तुमने तो मेरे भी वादे का पास नहीं किया कि मेरे साथ वादे का ही सोच लेते। याद रखे, जो कौम तौहीद छोड़ दे उससे ज्यादा फिर बुरी बात नबी के लिए अफसोस की कोई नहीं हो सकती, क्योंकि नबी की तो मेहनत ही इस बात के ऊपर होती है कि लोगों को तौहीद पे लेकर आया जाए, शिर्क से निकाला जाए। अब वो सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया, अगर कोई कौम इस किस्म के कामों में पड़ जाए तो वो उन्होंने गुस्से में ही आना था कि तुम्हें क्या बीमारी पड़ गई, ये तुमने क्या किया। और आज उम्मत मुस्लिमा को देख ले, इनका क्या हाल है, इन्होंने भी अपने नबी की मेहनतों के ऊपर पानी बहा दिया अगर ये शिर्क में पड़ जाते। अगर ये कब्रों को पूजना शुरू हो जाते हैं, कब्रों पे सजदे कर रहे हैं, कब्रों से मांग रहे हैं, कोई हाल ही नहीं रह गया। हर दो दो कदम के फासले पर देखे कोई मजार बना हुआ, उसके ऊपर चढ़ावे चढ़ाने लगे हुए, कब्र चादरें चढ़ा रहे हैं। मतलब ये आपने कदर की अपने नबी की मेहनतों की? लेकिन ये याद रखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ये 82 आयत बहुत जबरदस्त है, कि अगर कुछ कर भी चुके हो ना, चाहे वो तुगयानी है खाने पीने में हमने की है, या हम ऐसे कोई काम कर चुके हैं, या उम्मते मुस्लिमा भी, अगर बनी इसराइल के लिए ये हो सकता है ना, तो उम्मते मुस्लिमा के लिए जरूर हो सकता है। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नी लगफ्फार, उनमें बहुत बख्शने वाला हूं, लेकिन आओ तो सही मेरी तरफ, पलटो तो सही, वापिस ईमान ले आओ, वापिस सारे अमल शुरू कर दो, तौबा कर लो, हिदायत पा लो, हिदायत के रास्ते पे आ जाओ। ठीक है, तो ये हम भी कर सकते हैं, हम एज उम्मा भी, जो हमारी हालत हो चुकी है, जितनी बिगड़ चुकी है अब तो बिल्कुल, यानी समझने के नीचे किसी की चीज की गहराई भी होती है ना, तो उसकी भी एक एंड आ जाता है। हम गिरते गिरते वहां तक ये भी सोच ले कि अगर यहां तक पहुंच गए, अभी पलट जाए, तो अल्लाह को गफार पाओगे, लेकिन एहसास तो हो जाए। अब एहसास जया ही ना रहे तो फिर क्या रह जाता है? ये एहसास ही खत्म हो गया कि हम गिर रहे हैं, इंतहा हो गई है कि दिवालियां मनाई जा रही हैं, होलियां मनाई जा रही हैं। वो तुम्हें क्या हो गया? तुम किधर गुम हो गए? तुम्हारे नबी तुम्हें क्या तालीम दे के गए? वो तुम किधर पहुंच गए? स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के जहनों में ये डाला जा रहा है, दिवालियां मना के दिखाई जा रही। गैर मुस्लिम मुल्कों की बात नहीं हो रही, मुसलमान मुल्कों की हो रही, मुस्लिम स्कूलों की हो रही, मुसलमान बच्चों के साथ इस तरह से उनके जहन पलूट किए जा रहे। क्या दे रहे हो? क्या वो टीचर राई नहीं है? क्या वो प्रिंसिपल राई नहीं है? अगर फिरौन है उसके कौम के पीछे, उससे पूछ होगी, तुमने इसको हिदायत नहीं दी, इसको सीधी तरफ नहीं लेकर गए, क्या उन प्रिंसिपल उन टीचर से नहीं होगी, उन माँ बाप से नहीं होगी जिन्होंने उन बच्चों को उन स्कूलों में डाला हुआ? लेकिन हम कितने गिर गए और कितना और गिरेंगे, इतने मरहूब हो गए। ये भी मरहूब थे असल में, ये जब वहां से निकले थे, इनके अंदर इतना ज्यादा इस चीज का, यानी जो पिछली जो गुलामी की जिंदगी थी ना, ये जो जहन जब गुलाम हो जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल ही होता है कि ये जहनी आजादी मिले। जिस्मानी तो मिल जाती है, मुल्क आजाद हो जाते हैं, ये हो जाता है, लेकिन जहनी गुलामी रहती है। अब बिल्कुल आप इनके सिनेरियो को देखें, इन्होंने फिरौन से निजात तो पा ली, हमने भी अंग्रेज से निजात पा ली, उसके बाद क्या हुआ? लेकिन वो जो जहनी गुलामी थी, उससे नहीं निकल सके। ये भी उन्हीं तरीकों को दोबारा, जब ये पार होके आए समंदर से, तो इन्होंने देखा एक कौम, आप सूरह आराफ में पढ़ चुके, एक कौम बैठी थी बुतों के सामने, इनको बड़े खूबसूरत लगे, कितने खूबसूरत बुत है, मुझे हमारे लिए भी ऐसा बुत बना दो, ऐसा एक खुदा हमारे लिए बना दो, हम उसको देखे भी तो उसकी पूजा करें, उसके सामने बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी मत मारी, तुम्हें क्या हो गया? अगैर अल्लाह अबगी को मिला, मैं तुम्हारे लिए कोई और ले ला लेकर, अल्लाह के सिवा कोई और तुम्हारे लिए बना के रख दो, तुम कैसी जहालत की बातें कर रहे हो? आज हमारी भी मत मारी गई है, उन्हीं तारीकियों से जिनसे निकालने के लिए हमारे नबी आए, इन्हीं बुत परस्तों की उससे निकालने के लिए तो आए थे, उन्हीं के तरीकों को आज सीने से लगा रहे, हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या गुलामी हो सकती? इन्होंने भी बछड़ा ही बना के छोड़ा कि हम इसको पूजेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम क्या दर्स दे के गए, ये क्या कर रहे हैं पीछे से? क्योंकि जहन गुलाम थे, अभी तक उन चीजों की मरूबियत, जो इम्प्रेस होते ना, वो बाहर नहीं होता, वो गुलामी तो खत्म हो गई, जो वो मुल्कों ने आजादी ले ली, या इन्होंने फिरौन से आजादी ली, जिस अंदर जो रोब होता है ना, ये दिल के अंदर होता है, कि आप कितने इम्प्रेस्ड है। जब आप इम्प्रेस होते हैं ना किसी कौम से, उनके तरीकों से, तो याद रखिए, आप क्रिसमस भी ना मनाएंगे, आप वैलेंटाइन भी मनाएंगे, आप होलियां भी मनाएंगे, आप दिवालियां भी मनाएंगे, क्यों? क्यों, बात ये नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या इस चीज बहस में नहीं हम पढ़, बहस सिर्फ इस बात के ऊपर है कि दिल में किसका रोब है। दिल में इस्लाम का रोब है और उस पे फखर है कि मैं एक मुसलमान हूं, मेरे पास ईमान की दौलत है, या दिल में इनका रोब है भरे हुए, इनके जैसे, इनके तरीके, इनकी बातें, इनके फेस्टिवल्स, ये बड़े ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो गया फिर इसके ऊपर बहस करेंगे तो क्या हो गया, इसमें क्या हरज है? बात हरज की नहीं हो रही, बात ये है कि आज आपके दिल में इस्लाम की मरहूबियत है या इनकी मरहूबियत है, आज आपके दिल में क्या चीज बड़ी है, इस्लाम बड़ा है, हिंदुइज्म बड़ा है या क्रिश्चियनिटी बड़ी है? सब बड़े हैं असल में, इस्लाम सबसे नीचे है, वो तो दकियानूसी है ना, वो तो बैकवर्ड है, बाकी सब बड़े हैं, इसीलिए उनके तरीके अच्छे लगते हैं। अब क्या करें, छोड़ तो नहीं ना सकते इस्लाम को, बाओ से इस्लाम को ही पकड़ा हुआ है, बॉर्न मुस्लिम है तो इसलिए चिपके ही नहीं है इसके साथ, मजबूरी है, वरना इसको भी छोड़ जाते, ये हाल आ गया। ये आईना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जाके गूगल करके देख ले और आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं। दिवाली आती तो तब क्यों बताना पड़ता है कि ये हमने नहीं मनानी, क्यों बताना पड़ता है कि हमें क्रिसमस नहीं मनानी, क्यों बताना पड़ता है, बताना ही नहीं पड़ना चाहिए क्या? एक मुसलमान के अपने दिल के अंदर नहीं है कि उसको अपने दीन के ऊपर कॉन्फिडेंस हो? क्यों हमारा कॉन्फिडेंस लैक करता है? क्यों हमें अपनी ईद और ये अपने फेस्टिवल अच्छे नहीं लगते और दूसरों के अच्छे लगते हैं? कहीं तो गड़बड़ है ना, उसको तलाश करें। ये बहसें करने से नहीं होता, ये लॉजिक देने से नहीं होता, अपने अंदर को ठीक करना, अपने ईमान को मजबूत करना। जब ईमान मजबूत हो जाएगा, कोई ये लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने मनानी है कि नहीं मनानी। कालू, उन्होंने कहा, अब ये 6 लाख में से सारे के सारे ऐसे नहीं हुए थे, कहते हैं कि ये 12,000 थे जो लोग हारून अलैह सलाम के साथ ही रहे थे। तो उन्होंने कहा, अखलफ ना मऊइदा का, हाँ अखिलाफ, सॉरी, उन्होंने कहा मा अखलफ ना मऊइदा का, नहीं हमने खिलाफ किया है मूसा आपके वादे के, हमने नहीं खिलाफ किया, भी मलकी ना, अपने इख्तियार से नहीं हमने किया, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था, हम क्या करते, वाला कितना, लेकिन बल्कि हम मिलना औजार मिन जीनत القوم, हम पर उठवाए गए थे बोझ कौम के जेवरात में से। कहते हैं कि देखें, जब ये वहां से निकले थे, दो राय इसके बारे में दी जाती हैं, एक तो ये कि फिरौनियों के जेवर इनके पास थे, बाज कहते हैं कि ये लोग इतने ऑनेस्ट थे, अल्लाह वाले थे, मुसलमान थे, तो वो अपनी अमानते इनके पास रखवाते थे, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग रखवाते थे काफिर भी, और बाज कहते हैं कि नहीं, इन्होंने उनसे लिए थे कि हमारा कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, तो हमने पहनने हैं, तो इसलिए ताकि उनको शक भी ना पड़े, जेवर उनसे लेके और फिर पैकिंग वगैरह करके निकल रहे हैं, तो उनको पता है ना चले कि भाई हाँ इनका तो कोई फंक्शन है, उसके लिए जा रहे हैं। मगर ये बातें इतनी ज्यादा सही इसलिए नहीं लगती, ये भी लिखी हुई है कि ऐसे एक मुसलमान कौम का ये तरीका लगता नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम उनको लाने की इजाजत दें सारे जेवरात, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए जो काफिर थे और जान के दुश्मन हो गए थे, जान लेने के लिए वहां पर उन्होंने घेरा डाल दिया था, उनकी भी अमानते उनको वापस करने की फिक्र थी कि अमानते वापस करने, हम तो बड़े आराम से कह देते ना कोई बात नहीं, काफिर हैं तो इनके पैसे खाने में कोई हर्ज नहीं, काफिर हैं तो इनके साथ ये करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये काफिर जो है तो हम इनके पैसे हड़प भी कर लें, इनके साथ फ्रॉड भी कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इजाजत मिली नहीं है इसकी। आप अपने नबी की जिंदगी से तो देखे, वो जाते जाते भी दुश्मनों के, जान के दुश्मन जो बाहर खड़े में आ गए, इससे ज्यादा क्या बात बड़ी हो सकती, उनकी भी अमानते उनके हवाले करने के लिए हजरत अली को वहां पे सुला के गए थे, ये नहीं सबने सुना हुआ, सब सबको पता ही, फिर भी कहते नहीं कोई बात नहीं काफरों के पैसे खा ले, पता नहीं इनको कहाँ से इजाजत मिली है, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत भी थी, इनकी सारी अमानते लेके चले जाते, इन्होंने क्या करनी है, तो काफिर ही है ना, हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल जेन्युइन बात बन जाती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ पे लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। फिर दूसरी ये बात कही जाती है कि नहीं इनके अपने ही जेवर थे, तो बार क्या जो भी थे ना, तो उन्होंने जो जाहिर है 12 कबीले थे, तो उन्होंने अपने उन किसी के पास ही वो भी रखवाते थे, सब तो नहीं लेके चल रहे होंगे, तो हमारे ऊपर उठवाए गए थे, अब ये जो वो जो बाशऊर लोग थे, जो सही चलने वाले लोग थे, जो शिर्क में नहीं पड़े थे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर उठवाए गए थे ये बोझ कौम के, फकदफ ना हा, तो फेंक दिया हमने उनको। तो यानी वो लोग आए, उन्होंने कहा हमारे हवाले करो हमारे जेवर, तो हमने उनको दे दिए। या फिर कौम के अपने ही जेवर थे जो इनके पास रखवाए हुए थे, तो तब भी उन्होंने आके मांगे तो उन्होंने दे दिए। तो दोनों तरह की रिवायत है। फकदालिका अलकसामरी, तो इस तरह से डाल दिया सामरी ने, वो इस तरह से सामरी ने, यानी उन जेवरों को कहा जाता था कि गड़े में डाल दिया, फिर आग जलाई, फिर उनसे मेल्ट करके एक बछड़ा बना दिया। फअखरज लहुम अजलन जसद लहु खुआर, फिर उसने निकाला इसे एक बछड़ा जो मुजस्सम था, बछड़े की तरह की उसकी सारी शेप थी, लहु खुआर, उसके अंदर से गाय की आवाज भी आ रही थी। कहा जाता है कि इसने, बास कहते हैं सामरी जादूगर था, लेकिन उसने ऐसे कुछ जादू की चीज तो नहीं करके दिखाई जा रहा आप इस तरह से, मगर ये जरूर है कि वो एक बड़ा माहिर कारीगर था। उसने ऐसे बछड़े को बनाया था कि एक तरफ से हवा जाती थी, दूसरी तरफ से निकलती थी तो आवाज आती थी। आपको पता है जब कभी तेज हवा चल रही हो, ये बाहर से हमें कैसी सीटियों की आवाज आती है, या कैसी हवा की झूं झूं की आवाजें आती है, वो भी तो एक आवाज होती है ना, पाइपों से गुजरती है तो कैसी आवाज आती है। तो उसने ऐसा एक चीज इस तरह से उसको बनाया था कि उसमें से आवाज आती थी। फकालू, तो उसने कहा, उन्होंने कहा, हाजा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, ये तुम्हारा इलाह है और मूसा का इलाह है। तो ये फनासिया, तो वो भूल गया। फिर उन्होंने कहा कि ये ही है खुदा, और मूसा अलैहि सलाम तो भूल ही गए हैं, वो तो इतने दिन हो गए चले गए, वो तो उनको पता ही नहीं है कि इलाह तो असल में ये है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कह रहे हो कि सामरी भूल गया, ये कहा जा रहा है कि सामरी भूल ही गया वो जो सबक उसको मूसा अलैहि सलाम ने बताया था। तो ये असल तो ये इला सामरी, लेकिन भूल गया कि मूसा अलैहि सलाम को बताया गया था, मूसा अलैहि सलाम ने बताया था कि अल्लाह है इला, लेकिन सामरी को ये बात भूल गई। इस तरह से तो दूसरा भी आपको मतलब पता चल गया। तो यानी दोनों मतलब हो गए ना, कि मूसा अलैहि सलाम भूल गए, उनको पता ही नहीं चला वो असल तो खुदा ये था और वो वहां पे चले गए, ठीक है, और या फिर सामरी भूल गया। अफला यरौना, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप वो देखते नहीं थे, अला यरजू इला इलैहिम कौला, कि वो लौटाता उनकी तरफ बात को, नहीं वो लौटाता उनकी तरफ बात को, अल्लाह बेशक नहीं, अन और ला दोनों मिलके, बेशक अन और ला नहीं, नहीं वो लौटाता, कौन नहीं लौटाता, पीछे किसकी बात आ रही है, एजल, एजल जो है ना, जो बछड़ा है, वो उनकी तरफ बात को तो लौटाता नहीं, यानी वो देखते नहीं कि जिसको वो पूज रहे हैं ये इनको कोई जवाब नहीं देता, उनको कोई काम नहीं आता, वला यमलिकु लहुम दर्रं वला नफा, वो उनके तो कोई काम ही नहीं आ सकता, ना उनको कोई फायदा पहुंचा सकता है, ना उनको कोई शर दे सकता है, ना वो शर से बचा सकता है। और दर की बात पहले आई इसलिए कि जरर जो होता है उससे बचने के लिए इंसान चाहता है कि किसी का सहारा ले ले, तो नुकसान से बचना चाहता है ना, तो ये तो उस नुकसान से भी नहीं बचा सकता और कोई फायदा भी नहीं दे सकता, किसी काम का है ही नहीं, तो फिर इसको क्यों पूज रहे हैं, इनकी बातों का भी जवाब नहीं देता। वलकद काल लहुम हारून, और अल्लाह के अलावा जिन को भी लोग पूछते हैं, कोई दरख्त को पूछ रहा है, कोई पत्थर के बुत को पूछ रहा है, कोई किसी कब्र को पूछ रहा है, उन सबके लिए भी यही बात रख के देख ले, वो कहाँ जवाब देते हैं, और वो किसी नफा नुकसान के भी मालिक नहीं। आप कहेंगे नहीं कब्र वाले तो मालिक हैं, अगर वो इतने ही मालिक हो तो फिर वो जिंदा होके क्यों नहीं आ जाते आपके पास, आपके अंदर आके बैठे ना, क्यों पड़े हुए हैं जमीन के नीचे, जो अपना ना नफा नुकसान कर सके वो किसी और का कैसे कर सकता है। वलकद काल लहुम हारून, और अलबत्ता तहकीक कहा था उनको हारून अलैहि सलाम ने मेरे कबलू, अब ये जो आयत है ना ये हारून अलैहि सलाम की बरात में है, ये अल्लाह ताला ने उनको डिफेंड किया, ये अल्लाह ताला ने उनकी सफाई पेश की है, ये अल्लाह ताला ने उनको बरी जिम्मा किया, क्योंकि ये लोग जो बाद वाले थे ना उन्होंने कहा कि नहीं, ये उन्होंने कहा कि हारून अलैहि सलाम ने भी उनको कुछ नहीं कहा था और वो भी उनके साथ ही मिल गए थे, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया उनसे हारून अलैहि सलाम ने कहा था मीन कबलू, इससे पहले, किससे पहले, मूसा अलैहि सलाम के वापस आने से पहले ही जब मूसा अलैहि सलाम गए हुए थे तो उन्होंने कौम को कहा था, या कौमी इन्ना मा फुतिन तुम भी, ए मेरी कौम बेशक तुम आजमाइश में डाले गए हो। इसके जरिए अल्लाह आजमाता है, जब भी कोई ईमान के ऊपर होगा अल्लाह आजमाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने सोच लिया कि तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हारी आजमाइश ही नहीं की अभी तक। आजमाइश तो आती है, ईमान की भी आजमाइश होती है, अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। अल्लाह ताला के अपने तरीके आजमाने के, किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से, और चेक किया जाता है इसका ईमान कितना है। उनके ऊपर इस तरह की आजमाइश आई, हर एक के ऊपर आजमाइशें आती हैं, सिर्फ उनके ऊपर नहीं है। और कोई फिर ये नहीं कह सकता हम क्या कर रहे हैं, हम तो किसी के पीछे लग गए थे, हमें तो उसने कह दिया था। आपको भी तो अल्लाह ताला ने अकल शऊर दिया ना, तो उसको इस्तेमाल करते, अंधाधुंध क्यों पीछे चले। तो उनको भी अल्लाह ताला ने आजमाया। तो हारून अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, ए मेरी कौम बेशक तुम आजमाइश में डाले गए हो, तुम्हारा रब तो इन्ना रब्बकुमुर रहमान, तुम्हारा रब तो रहमान है, ये थोड़ी है फत्तबिउनी वअतीउ अमरी, तुम मेरी मुझे फॉलो करो, मेरी बात को सुनो, समझो, मेरी पैरवी करो, मेरी इताअत करो, मानो मेरी बात। कालू, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, लन नबरा अलैहि आकिफीन, हम तो हमेशा रहेंगे, हम तो टलेंगे नहीं इस पर से, इसके आगे मजावर बन के बैठने से, जम के रहने से। हत्ता यरजिया इलैना मूसा, यहाँ तक कि मूसा ही हमें आके कहे, अगर मूसा अलैहि सलाम आके कहते ना कि नहीं ये गलत है और ये नहीं करना, तो फिर हम टलेंगे, वरना तो हम इसके आगे बैठेंगे। कहते हैं तीन ग्रोह हो गए थे उनके अंदर, एक ने तो यही कहा कि अगर मूसा अलैहि सलाम आके जब तक हमें कहते नहीं है, हमें मना नहीं करते, हम तो नहीं मनाओगे, हम तो यहीं बैठेंगे, यानी हारून अलैहि सलाम की बात को बिल्कुल ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरों तो कहा, इसको भी नहीं कहा कि हम मूसा अलैहि सलाम के आने के ऊपर हटेंगे, वो तो कहते बस है ही यही है खुदा। और तीसरे वो थे जिन्होंने हारून अलैहि सलाम का साथ दिया, काला या हारून मा मना का इजरा आईता हम दल्लू। तो अब मूसा अलैहि सलाम वापस आ गए, तो अब पूछते हैं ये, अब पीछे बीच में जो बात आई है ना, ये दो आयते 90 और 91, अल्लाह ताला ने इसमें बताया कि पीछे क्या हाल हो रहा था। अब मूसा अलैहि सलाम जब आए तो फरमाए, ए हारून कि किस चीज ने तुझे रोका था, कि जब तुम देख रहे थे कि ये भटक रहे हैं तो तुम्हें किसने चीज ने मना किया था, किससे इनको रोकने से तुम्हें किस चीज ने रोका था, तुमने किस चीज ने मना किया था इनको रोकने से, तुमने क्यों नहीं इनको रोका जब तुम देख भी रहे थे कि ये भटक रहे। अल्लाह तत्तबिअनी, क्यों ना पैरवी की तुमने मेरी। इसके दो माने हैं, इसका एक माना ये है तुमने मेरी पैरवी क्यों ना की, यानी मैं जो तुम्हें सारा ट्रेन करके गया किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना है, तो तुमने उस तरह से क्यों नहीं हैंडल किया। दूसरा इसका माना ये है कि तुमने क्यों नहीं मुझे फॉलो किया, तुम मेरे पीछे आ जाते वहां पे, इनके अंदर तुम क्यों रहते रहे। इसलिए उलमा कहते हैं कि बाज चीजें ऐसी होती हैं कि उसके अंदर किसी बड़े आलिम, जैसे हारून अलैहि सलाम भी उनके अंदर नबी थे ना, जैसे कोई बड़ा आलिम है या वो है, उनको उन चीजों के अंदर भी नहीं रहना चाहिए जो गुनाह के काम होते हैं, इसलिए कि ये गलत मैसेज लोगों को जा सकता है। जैसे कि एक फिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ कि अगर जैसे मसलन किसी मेज के ऊपर शराब, मसलन बड़े लोग बैठे हुए हैं और उसके अंदर कोई आलिम भी बैठा है और उस मेज पे शराब लाके रख दी जाती है, तो उसको वहां से उठ जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि फिर लोग समझेंगे कि अगर ये यहाँ बैठा हुआ है ना और ये शराब सर्व की जा रही है यहाँ पे, वो बेशक नहीं पी रहा लेकिन इसका मतलब ये ओके है क्या। तो जो इल्म वाले होते हैं ना, उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए। एक बंदा है जिसको पता ही नहीं है ना, उसके ऊपर नहीं कोई लोग देखेंगे, लेकिन एक इल्म वाला है, कोई आलिम है, कोई स्कॉलर है, जब वो कहीं बैठे उठे किसी मजलिस में जाए, उसको इतना केयरफुल होना चाहिए कि जो लोग देखेंगे वो ये ही सोचेंगे कि हाँ ये चीज सही है, इसीलिए तो ये यहाँ पे है। जैसे कुरान वालों को लोग कहते हैं, इन्होंने तो कुरान पढ़ा हुआ है, अगर ये गलत चीज होती तो ये क्यों करते, है ना। तो तुमने क्यों ना मुझे फॉलो कर लिया, तुम क्यों नहीं वहां से निकल गए, आफा सही था क्या, फिर तुमने नाफरमानी की है अमरी मेरे हुक्म की, तुम मेरे हुक्म को तोड़ा है तुमने, यानी क्योंकि कह के गए थे ना जब हमने सूरह आराफ में पढ़ा है कि तुमने इनके अंदर इसलाह करते रहना है, तुमने मुफ्सिदीन के पीछे नहीं चलना, तुमने अपनी जिम्मेदारी को पूरी करना है। तो अब उनको उनके बालों से पकड़ लिया, दाढ़ी से पकड़ लिया। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सख्त गुस्से में थे, इसलिए कि बात कोई छोटी बात नहीं थी। ये नहीं थी कि किसी मस्जिद के फंड्स में से किसी ने कुछ ले लिया, इधर उधर कर लिया, या किसी ने कोई कोई चोरी कर ली, कोई झूठ बोल लिया। बात थी शिर्क की, और इससे बड़ा गुनाह नहीं कोई हो सकता। तो वो इतने गजब में थे कि उन्होंने अपने भाई का दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए। तो आगे से हारून अलैहिस्सलाम, हालांकि वो बड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं या ये कौला यबना उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे। और इस तरह नहीं कहा है मूसा तुम मेरे से छोटे और ये कर रहे, नहीं, बल्कि माँ के बेटे कह के, ताकि उनके अंदर एक माँ का वास्ता दिया जाए। और माँ की मोहब्बत और शफकत होती है, यानी हम एक ही माँ के बेटे हैं, ताकि नरमी आए उनके अंदर। ला ताखुद बिल लिहयती, ना आप पकड़े मेरी दाढ़ी को, वला भी रासी, और ना मेरे सर को। और वहां पे सूरह आराफ में आता है कि वला तुशमित भी आधा, दुश्मनों को हंसने का मौका ना दे। वो तो खुशी होंगे, अच्छा है इनके अंदर आपस के अंदर ही कुछ हो गया, ऐसे लोगों में खुश होते हैं ना। इन्नी खशी तू, मैंने इसलिए ऐसा किया कि मुझे डर था, अंतकुला कि आप कहेंगे फर्रक था बनी इसराइल, तो इसने तफरका डाल दिया बनी इसराइल के दरमियान, कि हारून ने तफरका डाल दिया। कि कैसे तफरका डाल दिया, इसलिए कि मैंने आपको बताया ना कि ग्रो ग्रो हो गए थे। एक तो वो थे जो वहां पे बैठे हुए थे, एक वो थे जो हारून अलैहिस्सलाम के साथ एक ग्रुप था। और जब तफरका होता है, फिर उसके बाद अगर ये कुछ कहते, इन्होंने ऐसा नहीं किया कि शिर्क को बर्दाश्त किया, कोई इससे ये ना सोचे कि भाई शिर्क को भाई बर्दाश्त कर लेना चाहिए जहां पे तफरके का डर हो। नहीं, हारून अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो इनको लड़ा नहीं सकते थे कि जोर जबरदस्ती से, जैसे अपने साथ वालों को कहते कि आप इनके साथ लड़ना शुरू कर दो, जंग शुरू कर दो, यानी हाथ से इनको रोको। हाथ से भी रोकने की इजाजत है ना, तो वो नहीं की। इसलिए नहीं की कि खाना जंगी शुरू हो जाती, यहाँ पे खून खराबा हो जाता, और जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते तो कुछ और ही मसला खड़ा हो चुका होता, वापस में फिरके फिरके हो जाते। यहाँ पे एक बहुत गहरा पॉइंट है हमारे लिए सोचने का, और उस वो ये है कि देखें, इतनी बड़ी शिर्क की बात थी, तब भी उन्होंने अवॉइड इसलिए किया कि तफरका ना पड़े। और हम आज छोटी छोटी बातों पर, बहुत छोटी फिक्ही बातें हैं, सब मुसलमान हैं, सब सही दीन के ऊपर हैं, मगर कोई एक इमाम को फॉलो करता है, कोई दूसरे को, इसकी बेस पे हम तफरके तफरके करके बैठ जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। जबकि तफरका इतनी बुरी चीज है कि वो वहां पे कहते हैं कि मुझे ये डर था, इसलिए नहीं मैंने इनको हाथ से बाज किया, इसलिए नहीं मैं हद से बढ़ा, कि हाथ से बढ़ के इनको जाके शिर्क से रोकता। तो हमारे यहाँ सिर्फ इस बात पे कि एक इमाम ने एक कहा है, दूसरे इमाम ने कुछ और कहा है, उसकी बेसिस पे इतनी ज्यादा बड़ी दरार डाल लेते हैं उम्मत के अंदर, कि जैसे कि दूसरा बिल्कुल ही काफिर है, वो तो मुसलमान है ही नहीं। इसलिए क्योंकि वो जो हम हमारे इमाम कह रहे हैं, वो उसको नहीं ना मानते, वो कुछ और कह रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि तफरका डालना कितना गलत चीज है। वलम तर खुब कौली, और ना तुमने इंतजार किया मेरी बात का, तो मुझे ये डर था कि आप आके कहेंगे कि तुम मेरा ही इंतजार कर लेते, तो मैंने तो तुम्हें कहा था कि अच्छी तरह मेरी जानशीनी करना, इसलाह का काम करना, तो तुमने पीछे से ये कर लिया कि इनके अंदर तफरका डाल दिया, और आप मुझसे नाराज होते कि तुमने मेरा भी इंतजार नहीं किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के हाँ भी उनका ये उजर काबिल कबूल था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये कबूल किया, क्योंकि आगे कोई बात नहीं कही गई कि फिर नहीं उनको ये करना चाहिए था, नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और अब क्या है? फरमाया कौला फमा खतबुकुम या सामरी, ए सामरी तेरा क्या माजरा है? अब मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पूछ रहे हैं, कौला बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही, उसने कहा मुझे वो चीज समझ में आई जो इनको नहीं समझ आई थी। फकबत्तु कब्दतन मिन अथर रसूल, तो मैंने मुट्ठी भर ली एक मुट्ठी रसूल के नक्शे कदम पे से। फनबस्तुहा, तो मैंने डाल दिया उसको, उस पे बछड़े पे। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं कि उसने कहा जी मुझे तो जो समझ में आया मैंने वो किया, ये इनको ये बात नहीं समझ आई जो मुझे इतनी गहरी बात समझ आ गई, वो ये कि बास तफसीरों में लिखा हुआ है वल्लाहु आलम कि उसने कहा कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पे सवार थे और वो समंदर फटा था और वो जा रहे थे, तो उनके घोड़े के जो पैर जहां पे पड़ते थे वहां की जो मट्टी थी वो मैंने उठा ली थी, क्योंकि वो मट्टी जहां पे पैर डालता था घोड़ा वहां उसकी मट्टी पे सब्जा उगाता था, तो उसने सोचा ये कोई मिरेकल ही मट्टी है, उसने वो उठा ली और बछड़े पे डाली और बछड़ा बोलने लगा और ऐसे। हालांकि वो उसमें से यहाँ पे पता चलता है कि उसके अंदर से एक गाय की सी आवाज आ रही थी, कोई ऐसे नहीं था कि वो जिंदा बछड़ा हो गया हो, वल्लाहु आलम। मगर असल बात ये पता चलती है कि रसूल जो उसने जो कहा कि वो जिब्राइल अलैहि सलाम को वो कह रहा है, मगर हदीस से ऐसी बात कहीं आती नहीं है कि ये था। ये हो सकता है कि मूसा अलैहि सलाम की जो तालीमात हैं उनमें से कोई चीज इसने ली और इसने कहा कि बार क्या भी उसका कलाम है उसकी बात है, और ये इसको ऑथेंटिक नहीं कहा गया कि ऐसा ही हुआ था, उसने उनकी तालीमात में जो आपने पीछे छोड़ा था उसमें से कोई बात समझी और उसने कहा कि मैंने तो यही समझा और मैंने ये असरे रसूल में से ही लिया, यानी रसूल की तालीमात में से ही लिया, मैंने इसको ही कब्जे में किया और फिर मैंने वो ही डाल दी, वो ही बातों से मैंने ये बछड़ा बनाया, और वकदाली कसम वलत ली नफसी, और इसी को मेरे नफ्स ने मेरे लिए आसान कर दी। तो वो पहली बात भी मैंने आपको बता दी जो तफसीरों में लिखी हुई, और ये भी कि वो बड़ा शातिर आदमी था ना, तो उसने कहा कि मुझे किसी और को तो इतनी बात समझ नहीं आई जो मुझे समझ आ गई और मैंने ऐसे किया और ये ऐसे हो गया, जो इस तरह के लोगों को उल्टी तरफ ले जाने वाले शातिर लीडर होते हैं फिर वो ऐसी ही बातें करते हैं। इंसान ना इसीलिए गुमराह भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो लीडर होते हैं या बहुत सारे जो इमाम होते हैं, बहुत सारे जो गलत करने वाले होते हैं, वो यही करके कहते हैं नहीं जी हमें तो ये बात समझ आ रही है। उसमें देखना चाहिए फिर कि कुरान से ये बात साबित होती है, सही हदीस से साबित होती है, तो फिर तो ठीक है, वरना ऐसे ही कोई आपको अपने पास से काम इजाद करके कह दे कि जी मुझे तो यही समझ आई, तो ये इसको दीन नहीं समझना चाहिए फिर। ठीक है, काल फ़ज़हब, तो मूसा अलैहि सलाम ने अब उसके लिए एक सजा तजवीज की, फरमाया मूसा अलैहि सलाम ने बस जा तू, फ़इन्ना लका फ़िल हयाती, तो तेरे लिए है जिंदगी में, जिंदगी कौन सी, दुनिया की जिंदगी में, अंतकूला ला मिसास, कि तू सारी जिंदगी अब कहता रहेगा ना मुझे छूना ना मुझे छूना। इसको ऐसी एक बीमारी लग गई थी, कहते हैं लेप्रसी की थी, जजाम की बीमारी हो गई थी या क्या था, कि जो अगर इसको कोई छू लेता था टच कर देता था तो इसकी बीमारी और बढ़ जाती थी। अल्लाह अकबर, ये ना छोटी बात नहीं होती कि खुद भी गलत रास्ते पे होना और अपने पीछे लोगों को भी लगा लेना कि आ जाओ दो। और वो एक बंदा फितना उठाता है और बाकी लोग अपनी अकल जो है ना एक साइड पे रख के बस भागते जाते हैं उसके पीछे। वा इन्ना लका मौइदन लन तुखलफहु, और बाकी ये तो दुनिया की जिंदगी की सजा थी और एक वादे का वक्त तो मुकर्र ही है, इसके खिलाफ नहीं किया जाएगा, इसको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा उसके, यानी उसके अगेंस्ट नहीं होगा, क्योंकि कयामत के दिन यानी उस दिन का जो उस दिन की जो सजा है वो तो मिलके ही रहेगी, ये तो दुनिया की सजा है, वो अलग है आखरत की सजा। वंजुर इला इलाही का, और देख अपने इला की तरफ जिसको तू कहता था ना ये इला है, अल्लजी जलता अलैहि आकिफन, जिसके ऊपर तू रहा बैठा रहा मोतकिब बन के, उसके आगे पुजारी बन के बैठा रहा। लनुहर्रिकन्नहु, अलबत्ता हम जरूर जला डालेंगे इसको, सुम्मा लनन्सिफन्नहु, फिर हम इसको जरूर फेंक देंगे, फिल यम, समंदर में, नसफन, फेंक देना, ये भी ताकीद के लिए आया। और फिर मूसा अलैहि सलाम ने ये हकीकत लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखो इसका हाल क्या होता है, उन्होंने उस बछड़े को जला के, कहा जाता है कि वो जाहिर है जला के तो उसके साथ मट्टी और पत्थर भी थे, और उसके बाद वो जो बिल्कुल मेल्ट होके सख्त हो गया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको समंदर में बहा दिया। इसलिए कि जो शिर्क की जो याद होती है ना उसको भी मिटा देना चाहिए, जब ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतुहात की तो हजरत खालिद बिन वलीद को भी भेजा था और हजरत अली को भी और उनको, कि जो भी ऐसी चीजें हैं जहां पे कोई बुत पूजे जाते या जहां पे कोई अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाती थी, उन सारी निशानियों को भी मिटा दो। तो बुतों को तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, ऊंची कब्रों को भी फ्लैट कर दिया गया कि लोग इन चीजों की पूजा ना करें। इसीलिए आपको पता है हजरत उमर ने जो इस दरख्त के नीचे बैते रिजवान हुई थी और लोग उसके नीचे जा जाके जरा बहुत ही अकीदत करना शुरू कर दिए थे, तो उनको ये डर हुआ कि कहीं लोग इसकी पूजा ही ना शुरू कर दें दरख्त की, इनका क्या पता, तो उन्होंने उस दरख्त को कटवा दिया था। तो ऐसी जो कोई कहीं पे भी शिर्क का शाइबा भी हो सकता है, इस्लाम उसको भी, ये नहीं कि आप उसको पूजने लगेंगे, मगर कभी हो सकता है ना, क्योंकि नूह अलैहि सलाम की कौम ने भी जो शुरू के अंदर एक अपने प्यारे बुजुर्गों की, नेक लोगों, नेक ही थे वो, बुरे नहीं थे वो, उनकी जो उनकी सूरतें बनाई थी, उनके बुत बनाए थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये हमें कुछ देते हैं, उन्होंने कहा था इनको देख के हमें अल्लाह याद आ जाते हैं। अगर हमें ना इतने नेक बुजुर्ग थे, इनको देख के देखते रहेंगे हमें अल्लाह याद आएगा, हम फिर नेकियां करेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे जज्बे से ही तो शैतान शुरू कराता है, ऐसे तो नहीं कहता कि तुमने अब शिर्क शुरू करना है, चलो आ जाओ शिर्क शुरू कर दो, ऐसे नहीं कहता वो। तो उनसे भी ऐसे शुरू करा के और फिर कहाँ तक उनको पहुंचा दिया। इसी तरह लोगों से वो ऐसे काम कराता है, और इसी वजह से हमारी शरीयत में मना है कि आप घरों में बुत रखें, ठीक, कभी किसी किस्म का भी बुत ना रखें, चाहे वो लैंप की सूरत में है, चाहे वो मतलब और डेकोरेशंस वगैरह होती हैं, कोई उन्होंने, कोई लोगों ने हाथी रखे होते हैं, कई उन्हें घोड़े रखे होते हैं, कई उन्हें इस तरह की चीजें रखी होती हैं, बड़ी डेकोरेशन है, बड़ी खूबसूरत लग रही, आपको मना किया गया, आप कहते हैं हम इनको पूछते थोड़ी, बेशक आप नहीं पूछते, लेकिन जैसे जिना का फरमाया ना कि जिना के रास्ते पे भी ना जाओ, करीब भी ना जाओ उसके, उसके रास्ते को बंद कर दिया, जिना तो भी आगे होना था, इसी तरह शिर्क के रास्ते को भी बंद कर दिया। वो पता है आगे कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वो पहले सड़क दूर से ही बंद कर देते हैं कि इस सड़क पे नहीं जाना, एंड में थोड़ी आके बंद करते, कोई आगे गड़ा है, कोई आके एक्सीडेंट है, वो पहले से ही बंद की होती, ये रास्ता ही बंद कर दिया। जब हमें मना कर दिया जाता है तो फिर इसका जवाब देने की क्या जरूरत है, नहीं हम तो पूजते नहीं है, नहीं तो उन लोगों के लिए कहा गया, उठा के फेंके ऐसी चीजों को जो कि बुत हैं घर के अंदर रखे, क्यों रखे हम बुत। तो एक हमारे दिल में ना इस चीज की कराहत होनी चाहिए, जो चीजें हमें हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने, हमारे नबी ने बता दी है, इतना तो रिगार्ड करें उनकी बात का, उनकी बात का कोई रिगार्ड नहीं है, मतलब हमें अकलें समझे बहुत ज्यादा, हम तो नहीं करते, तो उनको नहीं पता था कि ये नहीं करते, ये तो मुसलमान है, मुसलमान थोड़ी बुत को पूजेगा, उनको नहीं पता था ये बात, हमें ज्यादा समझ आई है। लेकिन उन्होंने उस जमाने में, उस वो तो कोई भी नहीं ऐसे करता था, जो मुसलमान थे वो कहाँ बुत परस्ती करते थे, फिर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं बुत तो और तस्वीर नहीं होनी चाहिए घर में, ये तस्वीरें लगाना दीवारों के ऊपर और उसको बड़े अपनी खूबसूरती करना, उतार दे उनको। तो इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, बेशक तुम्हारा इलाह अल्लाह है, वो अल्लाह नहीं कोई इलाह उसके सिवा, इलाह का तर्जुमा उर्दू में तो कोई इसका एक वर्ड है ही नहीं, माबूद एक एक माना उसका देता है, मगर इलाह के अंदर तो बहुत सारे माने हैं, वो जो सबसे ताकतवर है, वो जो मालिक है, जो खालिक है, जो मुदब्बिर है, जो सारी ताकतें रखने वाला है, जो हर चीज कर सकता है, वो सारे माने एक इलाह के अंदर आ जाते हैं, कोई इलाह नहीं इल्ला हुआ मगर वो ही है। ये अब मूसा अलैहि सलाम जब उसको समंदर के अंदर बहा रहे हैं तो तब ये कह रहे हैं, और पता नहीं शायद हिंदुओं ने भी इसी चीज से लिया हो, बस कहते हैं कि शायद यहूदियों के अंदर से ही, हिंदुओं के अंदर भी ये आई, या उन्हीं के लोग हिंदू फिर धर्म को उन्होंने अपना लिया कि अब वो भी जाके अपने मुर्दों को भी उसमें बहाते हैं गंगा में, और फिर वो अपने बुतों को भी जाके एक दिन बहा देते हैं। तो खैर, तो उन्होंने मूसा अलैहि सलाम ने उस वक्त उनको फिर से तालीम दी, वो जो फाउंडेशन थी ना, जो बुनियाद कमजोर हो गई थी, उस बुनियाद के ऊपर वापस लेकर आए कि तुम्हारा इला तो वो इला है जिसके सिवा कोई और इला नहीं, बस या कुल्ला शैइन इल्मा, उसका इल्म हर चीज पे मुहित है, हर चीज को घेरे हुए है, हमने पहले पढ़ा है ना, तख्त सरा भी कोई चीज हो ना, ये तो गीली जो जहां तक गीलाहट होती है जमीन की, उससे नीचे भी कोई चीज है उसको भी जानता है, आसमानों में कोई चीज है उसको भी जानता है, कोई चीज उससे इल्म से बाहर है ही नहीं, अहाता किया हुआ उसने हर चीज अपने इल्म से। कदालिक नकुस्वालिक मिन अम्बाई। इसी तरह हम बयान करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 98 आयत तक, पता नहीं मैंने 98 आपको कहा था, 89 तो नहीं बोल दिया, अपने नोट्स में चेक कर लीजिएगा, और मैंने आपको पहले 89 तो नहीं कह दिया था। तो 98 आयत तक, यहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म हो जाता है, फिर ये थर्ड पार्ट इस सूरत का शुरू हो जाता है। इसी तरह हम बयान करते हैं आप पर खबरें, खबरों में से, सारी खबरें तो नहीं, खबरों में से माँ कद सबक, जो पहले गुजर चुकी, जो पहले वाकयात गुजर चुके हैं, वो हम आप पे बयान करते हैं। क्यों? अब ये देखें, मुसलमान जो वहां पे पिस रहे हैं, मुशरिकीन है मक्का के मजालिम सह रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह समझा दिया गया इस किस्से को बता के कि जिस रब ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दी थी, वही रब तुम्हारी भी निजात का सामान करेगा। और जैसे उनको मुश्किल से निकाला था, मुश्किल हालात से निकाल के अल्लाह ताला ने उनको एक आजाद कौम बना दिया, इसी तरह अल्लाह तुम्हें इनसे आजादी देगा। और ऐसा ही हुआ था। और जिस तरह अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई थी, अल्लाह तुम्हारी भी मदद फरमाएगा, तो इसकी फिक्र ना करो। तो अल्लाह ताला इसमें होप दिखाता है इंसान को। मैंने आपको बताया था ना, ये वाली सूरतें वो हैं जो मुश्किलों के अंदर पढ़ते हैं, तो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम वो चीज लेते ही नहीं उससे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती। तो ये तो चीज ले इससे कि कैसे अल्लाह ताला, देखो किस तरह आन की आन में एक दुश्मन जिसका कुछ सोच ही नहीं सकता, बनी इसराइल बेचारे क्या मुकाबला उन्होंने करना था, वो तो कोई मैच ही नहीं थे फिरौन के लश्कर का, उन्होंने क्या लड़ना था, वो कभी उन्होंने लड़के भी नहीं देखा था, वो ने क्या खात्मा करना था अपने दुश्मन का, लेकिन अल्लाह ताला ने देखो कैसे करा दिया, कैसे उनको निजात दे दी। अल्लाह अकबर। वक़द आतीना का मिल्ल दुन्ना विक्र, और तहकीक हमने अता किया, हमने दिया आपको अपने पास से एक जिक्र, अपने पास से, जब अल्लाह ताला फरमाते ना तो स्पेशली कोई चीज देने के लिए तरफ बात होती है, स्पेशली एज अ फेवर हमने आपको ये जिक्र दिया। एक जिक्र मतलब कुरान, जिक्र से मतलब यहाँ पे कुरान करीम है, कि हमने आपको अपनी तरफ से ये जिक्र दिया। जिक्र का मतलब रिमाइंडर, नसीहत, याद दिहानी। अच्छा ये बताइए कि हम सबके हाफ़िज़े बहुत तेज है या हम भूलते हैं? सब कहेंगे हम भूलते हैं, है ना। हम बहुत सारे लोगों को हमें ये शिकायत होती है कि हम भूल जाता है, भूल जाता है। इसीलिए तो कुरान जिक्र है, रिमाइंडर है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हमें भूल जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने ये कुरान नाजिल किया कि हमें बार बार याद दिलाए। आप देख लें हमें कितनी जल्दी भूल जाता है, अब तो हम ज्यादा ही भूलने वाले हो गए, इंसान वैसे ही सारे इंसान ही भूलने वाले, इसीलिए तो उसको इंसान कहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पहले लोगों की बातें पढ़ते थे ना, तो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो लोग पूरे पूरे जो उनके सामने खुतबा दिया जाता था या शायरी की जाती थी, वो सुनते थे और उनको याद हो जाती थी। हमें तो अपनी भी बात नहीं याद रहती कि हमने अभी क्या बात की थी। जैसे वक्त आगे चलता जा रहा है, यूं महसूस होता है कि याददाश्त में और भी कमी आ रही है, और उतनी ही ज्यादा फिर रिमाइंडर की जरूरत होती है। तो ये हमें रिमाइंड कराता है अल्लाह के बारे में, अल्लाह की याद दिलाता है हमें। कुरान जिक्र है, और जिक्र कैसा है? अल्लाह की याद के लिए। जैसे नमाज जिक्र है ना, उसके बारे में भी फरमाया ना कि वो जिक्र है, इसी तरह कुरान भी है। तो याद दिहानी सबको ही चाहिए, इसलिए ज्यादा कुरान की तरफ आना चाहिए। मन आरद अनहु फइन्नहु यहमिलु यौमल कियामति विज़रा। जो कोई इस जिक्र से मुंह मोड़ेगा, तो लोग पूछते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इस जिक्र से मुंह मोड़ने से। कुरान को पढ़ना फर्ज तो नहीं है, कुरान को समझना फर्ज तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो इस जिक्र से मुंह मोड़ेगा कयामत के दिन वो एक बोझ उठाएगा। बोझ उठाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, विजर बहुत भारी बोझ को कहते हैं। कौन है जो कहेगा कि मैं बोझ उठाना, इवन एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो भी जब उसके आखिरी दिन होते हैं, तो इतना बोझ होता है उसके ऊपर, लेटना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, कहती है कब मैं इससे फारिग हो जाऊं, हालांकि अपना बच्चा है, फिर भी आप देखें सामान कहीं उठा के ले जाना होता है, बंदा कहता है जल्दी से इसको बुक करा दूं। और ये तो गुनाहों का बोझ है, इतना भारी ये बोझ होगा कि इंसान इससे निजात नहीं पा सकेगा। जिसने अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी इस जिक्र से दूर, इससे मुंह मोड़ के, एराज क्या होता है? एराज ये नहीं कि उसको पता नहीं है, ये नहीं होता, एराज का मतलब है कि पता है, जानबूझ के इग्नोर करना, ये होता है एराज। और आप देखें कि आज कुरान किस घर में नहीं है और किसको नहीं पता कि अल्लाह का कलाम है, इसके बावजूद एराज कितना है। बस नहीं, इसकी तरफ नहीं आना। तो ऐसे लोग जो इस कुरान से एराज करते हैं, एराज में ईमान ना लाना भी है, एराज में अमल ना करना भी है, एराज में इसको अपनी जिंदगी में शामिल ना करना भी। अमल कैसे करेंगे जब पता ही नहीं इसमें है क्या? अमल तो बाद की बात आती है ना, समझना पहले है, सीखना पहले है, इल्म लेना पहले है, ये सीढ़ी है, तब जाके आप अमल पे पहुंचते हैं। तो एराज ये है कि जानबूझ के इसको निग्लेक्ट किया। और हमने पढ़ा है कि जो इसको निग्लेक्ट करेगा तो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, और वो कहेगा या अल्लाह मैं अंधा क्यों उठाया गया? तो उसे कहा जाएगा कि तुम दुनिया में अल्लाह के जिक्र से अंधे रहे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें अब अंधा ही उठाएगा। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे कहा गया, और आगे भी आएगा इसके बारे में कि कैसे, यही जो मैंने आपको बात बताई अंधा उठाने की, ये इसी सूरत में आएगा। यहाँ पे कहा गया कि भारी बोझ उठा देगा, जो खालिदीना फी, इसी में हमेशा रहने वाले हैं, यानी इसी बोझ को उठाए रखेंगे, उठाए रखेंगे, सारा कयामत का दिन गुजर जाएगा और इनका बोझ नहीं उतरेगा। वसअलहुम यौमल कयामत हिमला, और कितना बुरा बोझ है जो उस दिन उठाएंगे। उस दिन एक मुसीबत पहले होगी अपने हिसाब किताब देने की, प्लस ये बोझ भी उठाया होगा। अस्तगफिरुल्लाह। और ये यौमल कयामत ही, कयामत के दिन ये बहुत बुरा बोझ होगा। कौन सा कयामत के दिन? यौमा, फिर उसके बारे में बताएगा, युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा। सूर क्या है? वो एक जैसे हॉर्न होता है उस तरह से एक चीज है। और एक हदीस में आता है दो सूर फूंके जाएंगे, एक में तीन का भी जिक्र आता है। तो एक में आता है कि एक होगी जिससे एक सूर फूंका जाएगा जिससे लोगों में ऐसे दीवानगी हो जाएगी, हर चीज तबाह होने लगेगी, दूसरा सूर होगा जिसमें लोग सारे मर जाएंगे, तीसरा होगा जिसमें खड़े होंगे। एक और जगह आता है एक में जिसमें खत्म हो जाएंगे, दूसरे में जिसमें उठ जाएंगे। तो ये वाली जो है ये वो वाला सूर है जिसमें खड़े हो जाएंगे दोबारा, ये वो आखिरी सूर की बात है। और सूर के बारे में तो ये आता है, अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कैसे आराम से बैठ जाऊं, मैं कैसे चैन में रह सकता हूं कि सूर फूंकने वाले फरिश्ते ने सूर को मुंह में लिया हुआ है, मुंह में लिया हुआ है, और उसने गर्दन झुका के ना अपना कान लगाया हुआ है अल्लाह के हुक्म की तरफ कि किस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाए और वो फूंक दे। यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह का हुक्म आएगा फिर वो जाएगा, फिर जाके सूर पकड़ेगा, फिर उसको लेके मुंह पे लगाएगा, तो उसमें भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। नहीं, वो इतना अलर्ट है, इतना रेडी है कि उसने सूर को मुंह में पकड़ा हुआ और जस्ट वो वेट कर रहा है कि कौन आए और वो फूंक दे। अब आप देखें कि कितनी जल्दी फूंक दिया जाएगा, यानी जरा भी डिले नहीं है, वो कितना करीब है ये कि अल्लाह के हुक्म के आते ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो फरमाया मैं कैसे चैन से बैठ जाऊं? अल्लाह अकबर। और हमें फिक्र नहीं है कि देखो कितनी करीब है ये सब कुछ, कितनी करीब है कयामत, इतनी जल्दी आ जाएगी क्या? नाशुरुल मुजरिमीना यौमा इज़िन ज़ुरका, और हम जमा कर देंगे इकट्ठा। हशर करने का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, मुजरिमों को उस दिन ज़ुरका, नीले, नीली आंखें से भी मुराद हो सकता है एक तफसीर में ये है। और नीली आंखें वो नहीं है जिन्हें हम बड़ी खूबसूरत समझते हैं कि अच्छा उस दिन तो बड़ी खूबसूरत हो जाएंगी आंखें, नहीं, वो वाली नीली नहीं है, ये वो वाला नीलापन है जिसको आप कहते हैं ना कि जब, यानी जब खून जम जाता है या किसी चोट की वजह से इस तरह होता है, तो आप देखते हैं वो नील पड़ जाते हैं, जिसको हम नीली कहते हैं, नील कहते हैं ना, नील पड़ गया, तो वो डार्क ब्लूइश सा और ब्लैकिश सा जो एक होता है वो कलर। और ये क्यों होगा? लोगों के चेहरों का रंग भी हो सकता है, उनकी आंखों का रंग भी हो सकता है, क्योंकि आंखें जो है वो ऊपर रोल अप हो जाएंगी। और अरब कहा करते थे जब किसको बहुत खौफ में होता था ना, बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर, तो फिर उसके लिए ये कहा करते थे। और हम भी कहते हैं, इवन हम भी अपने उर्दू में बोलते हैं ना कि वो तो डर के मारे नीली पड़ गई, वो तो परेशानी की वजह से नीली पड़ गई। अब वो नीली वैसे भी इंसान का चेहरा ऐसा हो जाता है किसी ट्रेजेडी या इसकी वजह से, लेकिन ये हम एक मुहावरतन भी बोलते हैं, जब वो सख्त खौफ की बात या इतनी परेशानी की बात होती है तो उनकी हालत ये होगी कि उनके रंग ही बदल जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे वो लोग, और वो सारे मुजरिमों को अल्लाह ताला इकट्ठा कर देगा। फिर वो क्या करेंगे, यतखाफतून बैनहुम, फिर वो चुपके चुपके आपस में बात करेंगे, क्या कहेंगे, ए लबिस्तुमिल्ला अशरा, हम नहीं ठहरे मगर तुम नहीं ठहरे मगर अशरा, मगर 10, 10 क्या दिन महीने साल, ये कहाँ पे नहीं ठहरे, दुनिया में, यानी हम नहीं ठहरे मगर इतना थोड़ा सा अरसा, 10 दिन। लेकिन बाद में हमें अगली आयत से पता चलता है कि वो दिन की बात कर रहे हैं, ये वहां पे यौम की बात आई, तो वो 10 दिन कहते हैं, हम इतना थोड़ी देर रहे हैं दुनिया के अंदर, नहनु आलमु बिमा यकूलून, अल्लाह ताला फरमाता है हमें पता है वो उस वक्त जो कहेंगे, कोई हो सकता है ना आज दुनिया में कहे कि ऐसे कैसे हो सकता है वो ये कहे, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह को ज्यादा पता है वो उस दिन क्या बातें कर रहे होंगे, इज यकूलू, जब कहेगा कौन, अमसलुहुम तरीकतन, वो जो उनके अंदर मिसाली तरीके वाला था, यानी वो जो बड़ा कल्चर्ड था, वो जो बड़ा एजुकेटेड समझदार जिसको आप कहेंगे, पहले भी आया था ना कि उनके वो अपने तरीके के ऊपर, अपने मिसाली तरीके के ऊपर बड़ा फखर करते थे, तो ये वो बंदा है जो बड़ा मिसाली तरीका रखने वाला था, बहुत उनके अंदर होशियार और बहुत उनके अंदर सोफिस्टिकेटेड जिसको कहते हैं, एग्जाम्पलरी उसका किरदार था, वो बड़ा कल्चर्ड था, तो वो कहेगा लबिस्तुम इल्ला यौमा, और तुम तो बिल्कुल पागलपने की बात कर रहे हो, क्या बात करते हो, वो 10 दिन रहे थे, हम कहाँ 10 दिन रहे, हम तो सिर्फ एक दिन ही रहे थे। अब देखिए वही जो मैं आपको पहले बात कह रही थी कि इंसान को कितनी जल्दी समझ आ जाएगी, कितनी जल्दी समझ आ जाएगी कि ये दुनिया कितनी ही मुख्तसर थी, जो आज लग रही है ना इतनी लंबी कि हम उसकी प्लानिंग करते नहीं थकते, है ना, वो घड़ी 2 घड़ी की दुनिया लगेगी। और आज हमें किसी को कह देंगे ये तो घड़ी 2 घड़ी की, ये तो एक दिन लगनी, हमने कहाँ यकीन करना, लेकिन उसी दिन जाके उस दिन सब लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था, एक एक दिन की बात थी सिर्फ, और उस सोचें इस एक दिन को गुजारने के लिए हम कितनी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, कितने उसके हुक्म तोड़ते हैं, कितना हम परेशान रहते हैं, कितने हमने मसलों को, दुनिया के मसलों को पहाड़ के बराबर बना लिया होता है, कितनी हम फिक्रों में यहाँ की मुब्तला रहते हैं, हम यहाँ के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं सिर्फ एक दिन गुजारने के लिए, यहाँ सिर्फ एक दिन गुजारने के लिए, और वो जो हमेशा की जिंदगी है इसके मुकाबले में, उसके लिए ना वैसी फिक्रें हैं, चलो फिक्र होगी भी वैसी नहीं है जैसी यहाँ की है, जैसे यहाँ पे जॉब चले जाने का डर होता है ना, उससे ज्यादा फिक्र नहीं है मुझे आखिरत की, जैसे यहाँ से अपने बच्चे को कुछ हो जाने का होता है ना डर, उससे ज्यादा फिक्र नहीं है मुझे आखिरत की, हालांकि ये दुनिया है जो इल्ला यौमा, अगर एक दिन, हम नहीं ठहरे मगर एक दिन, क्योंकि ये बड़ा समझदार है ना, तो ये कह रहा है एक दिन तो ठहरे थे, तुम कहाँ 10 दिन की बातें कर रहे हो, 10 दिन तो बहुत लंबे होते, हम कहाँ 10 दिन ठहरे थे। तो ये जब अब वहां पे हशर में जमा हुए तो ये दुनिया की जिंदगी बस पलक झपकना ही नजर आएगी, और इस पलक झपकने तक की जिंदगी को गुजारना हमारे लिए अल्लाह की फरमाबरदारी में आज कितना मुश्किल लगता है, कितना मुश्किल लगता है कि हम इतनी सी देर के लिए भी अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चल पाते, इसीलिए तो जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना तो अल्लाह ताला उनसे यही फरमाएगा कि तुम कितने अच्छे रहे ना कि इतनी सी देर में तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी कर ली, इतनी छोटा सा तो टाइम था, इसमें अल्लाह की फरमाबरदारी करके जन्नत में दाखिल होगा, और जहन्नमियों को कहेगा तुम कितने बदबख्त रहे कि इतनी सी देर में तुमने अल्लाह की ऐसी नाफरमानी की कि जहन्नम का सौदा कर ली, इतनी सी देर में नहीं हमसे सही रहा जाता। मैं सोच रही थी आज सुबह ही, मैंने कहा हम ना अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि देखो तुम पढ़ो या तुम नेक बनो, या हम ऐसी कितनी उनको नसीहतें करते, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर देखो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तुम बुरे लोगों के सोबतों में होगे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा, तुम्हारा ये हो जाएगा नुकसान, वो हो जाएगा, और वो हमारी बात सुनते ही नहीं, तो हम इतना कुढ़ते हैं, इतना अपने आप को हलकान करते हैं, हर माँ बाप का यही हाल। लेकिन अल्लाह ताला हमें इतनी दफा कुरान में बताता है, कितना खोल खोल के वाजे करता है, हमारा कोई हाल इन बच्चों से मुख्तलिफ नहीं है, हम भी उसी तरह हैं जैसे वो ढीठ होते हैं। और हम सोचते ना, क्यों नहीं ये सुनते, इनको क्यों नहीं समझ आती, ये क्यों नहीं मेरी बात को मान जाते, कितनी दफा कह चुकी हूं। हमें भी तो कितनी दफा कहा जाता है, हमें भी तो कितना समझाया जाता है, हम भी तो अपनी डगर नहीं छोड़ते, क्या शिकायत करें इन बच्चों से, हम सब समझ के भी कैसे ना समझे बने बैठे, सब जान के भी अनजान बने बैठे, कि आज हमारे लिए इस दुनिया की सारी खुशियां ही खुशियां हैं, इसकी कामयाबी हमें कामयाबी लगती है, इसका पैसा ही हमें सब कुछ लगता है, इसका फेलियर ही हमें सबसे बड़ा फेलियर लगता है, इसमें यहीं पे लोगों की नजरों में जच जाना हमें सबसे अच्छा लगता है, यहीं पे लोगों की तारीफें हमें सबसे बड़ी चीज लगती है, बड़ी कामयाबी लगती है, यहीं की परेशानियां हमें हलकान रखती हैं, यहीं की फिक्रें हमें रातों की नींदें उड़ाए रखती हैं, सब कुछ हमारा यहीं से जुड़ा हुआ है। आखिरत की तो फिक्र भी कभी आती है, और कई कई दिन तो आती भी नहीं, यहीं के शौक हैं जो हमें बेचैन रखते हैं, जन्नत के शौक तो कभी कभी लगते हैं जब कभी बात सुन ले, जहन्नुम में जाने की फिक्र कि वहां पे चली ना जाऊं, कहीं उस अजाब में ना मुब्तला हो जाऊं, ये तो कभी कभी आती है। और अल्लाह ताला तो साफ बता रहा है, एक रहमान और रहीम रब, एक शफीक रब, एक मेहरबान रब, जैसे एक माँ तड़पती है अपने बच्चे के लिए और वो उसको चाहती है कि ये नाकामी से बच जाए, मेरी बात को सुन ले, मेरी नसीहत को सुन ले, अल्लाह ताला हमसे माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो भी चाहता है हम नाकामी से बच जाए, वो हमें वो फ्यूचर की बात जाके आज दिखाता है, देखो ऐसे कहेंगे लोग, देखो बच जाओ इस नाकामी से, देखो समझ लो इस दुनिया की हकीकत को, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली पानी में डुबो के, समंदर के पानी में डुबो के फरमाया कि अगर कोई उस उंगली को समंदर के पानी में डुबो के निकाले तो जितना पानी इस उंगली पे लग जाएगा, ये दुनिया है और ये समंदर आखरत है, कोई मुकाबला है, कोई मुकाबला है इतने से पानी का, इतने बड़े समंदर के आगे, फिर भी हमें समझ नहीं आती। फरमा दिया ये जिक्र है, ये रिमाइंडर है, ये तुम्हें बार बार समझाएगा, लेकिन अफला यतदब्बरुनल कुरान, क्यों नहीं तुम कुरान पे तुम तदब्बर नहीं करते, अम अला कुलूबिन अकफालुहा, या इनके दिलों पे ताले लग गए हैं क्या कि उनको बात ही समझ नहीं आती, वाकई ताले ही तो लग गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इस कुरान से नसीहत लेने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इस सबक को याद रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला में हिदायत अता फरमाए, और हमारी नस्लों को भी हिदायत अता फरमाए और हिदायत के रास्ते पे चलाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما